कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाशयाम् भक्ताय मेनुरक्ताय तव चादोक्षदस्य च वक्तुम् अर्हसि योद्धुयात् वेण्यरूपेण गामि माम्। अच्छानादपि कृष्णस्य प्रभो पुण्य भक्ताय मेनुरक्ताय तव चादोक्षदस्य च भक्तो योजयद् वेण्यरूपेण गामि माम्। अच्चानदपि कृष्णस्य भगवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवसः पुण्यम् पूर्वदेह भक्ताय मेनुरक्ताय तव चादोक्षदस्य अच्चनादपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो सुस्त्रवसः पुण्यम् पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मेनुरक्ताय कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवसः पुण्यम् पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मेनुरक्ताय तव चादोक्षदस्य च शब्दार्थ दोहराएंगे। यत जो च तथा अन्यत दूसरा अपि निश्चय ही कृष्णस्य कृष्ण का भवान आप भगवतः भगवान का प्रभो शक्तिशाली श्रवः महिमा में कार्य सुश्रवसः जो सुनने में अत्यंत मधुर लगे पुण्यम पवित्र पूर्व देह अपने पूर्व अवतार का कथा आश्रयम कथा से संबंधित भक्ताय भक्त के लिए मैं मुझको अनुरक्ताय अत्यंत ध्यान मग्न तब तुम्हारा तथा अधोक्षदस्य भगवान का जो अधोक्षद कहलाते हैं च और वक्तुमर्हसि सुनाए यह जिसने अधिरत दुहा वैन्य रूपेण राजा वेन के पुत्र रूप में गाम गाय रूपी पृथ्वी को इमाम इस अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्तियावेश अवतार थे, फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा अधोक्षर भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप उन राजा प्रथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। तात्पर्य भगवान कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। भगवद गीता 10.8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझी से उद्भूत है। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति के मूल हैं। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये सभी कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। कृष्ण के ये तीनों अवतार गुण अवतार कहलाते हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित है और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव क्रमशः सतो रजो तथा तमो गुणों का भार संभालते हैं। महाराज पृथु भगवान कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार हैं जिनसे बद्ध जीवों के ऊपर शासन किया जा सकता है। इस श्लोक में आगत अधोक्षज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के बोध से परे भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता। अतः अल्पज्ञानी तो भगवान को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर का निर्गुण रूप ही निर्मित कर सकता है, इसीलिए भगवान अधोक्षर कहलाते हैं। ओम अज्ञात मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स पदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमल श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजी सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्ण की शक्तियों के सत्यावेश अवतार थे, फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मनभावन लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा दोषित भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गौरव धरती का दोहन किया। हरे कृष्णा, आज सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे दोबारा आप लोगों के समक्ष आने का अवसर दिया गया ताकि मैं कुछ कहकर अपने शुद्धिकरण के लिए अग्रसर हो पाऊं। तो महाराज पृथ्वी की कथा हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं, किस तरीके से उनका राजा वेण के शरीर से को मंथन करके उद्गम कराया गया, फिर किस तरीके से ब्रह्मा आदि अधिदेवों ने, ब्राह्मणों ऋषियों ने उनका ग्लोरिफिकेशन किया और फिर बाद में पृथ्वी महाराज ने कार्यभार संभाला। तो इस अध्याय में जिसका नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, अब तक हम सभी सुनते आए हैं कि किस तरीके से विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सब सुनते आ रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि पृथ्वी को अगर कोई रूप लेना ही था तो गाय का ही क्यों लिया। बहुत ही अच्छा तार्किक प्रश्न है कि गाय का ही रूप क्यों लिया। और प्रश्न पूछते हैं कि कब राजा पृथु ने उनका दोहन किया, जब दोहन किया तो बछड़ा कौन बना जिसमें दूध निकाला गया, वो पात्र क्या था। आगे पूछते हैं किस तरीके से राजा पृथु धरती को इकसार करते हैं। आगे पूछते हैं किस तरीके क्यों भगवान इंद्र ने घोड़े को चुराया। इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रश्न विदुर जी पूछते हैं। तो इनसे हम ये समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि इतने सब प्रश्न पूछने के पीछे ऐसा लगता है कि बहुत ही ललायित है कुछ जानने के लिए। जैसे एक छोटा सा बालक बहुत सारे प्रश्न पूछता है, सारे प्रश्न पूछ लेता है, कब, क्या, क्यों, कैसे, किसने। इस तरीके से इन्होंने सारे प्रश्न पूछे, क्यों गाय, क्यों, कैसे कैसे दोहा, किसमें रखा, कौन। तो सारे प्रश्न पूछ डाले विदुर जी ने मैत्रेयी से, सारे प्रश्न पूछ डाले। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने लालायित हैं अपने उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रश्न मेरे, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि गाय बनी माता, पृथ्वी माता गाय बनी, वो प्रश्न पूछना ठीक था, लेकिन बछड़े का जिक्र क्यों आया, बछड़े के बारे में क्यों पूछते हैं। आगे जाके तो भगवान राजा पृथु गाय को दूहन करेंगे, ये बछड़े का यहां पर जिक्र क्यों करते हैं, वो क्यों पूछते हैं। तो उत्तर तो हम सभी को पता है कि हम दसवें स्कंद के कृष्णा बुक के भी पांचम से लीला से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कृष्ण को देखकर स्वतः ही माता यशोदा के स्तनों से दूध पात होता था। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जब बच्चा मौजूद होता है तो मां के प्रेमवश स्वतः ही दूध का उद्गम होता है। तो इसीलिए बछड़े के बारे में भी पूछा जा रहा है कि जो गौ माता है वो ऐसे तो दूध देगी नहीं, अगर बच्चा होगा तो बच्चे के प्रेम में दूध देगी। हम ये जानते भी हैं कि रोजमर्रा में पहले बच्चे को दूध पिलाया जाता है, फिर उसको हटा करके दूध निकाला जाता है। ये प्रथा है कि बछड़े का होना बहुत जरूरी है, बिना बछड़े के दूध निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। गाय को नहीं बनाकर दूध निकाल लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया वहां पर कि बछड़ा कौन बनेगा, बछड़ा कौन है। तो इन सब प्रश्नों से हम समझ सकते हैं कि विदुर जी बहुत ही ललायित हैं जानने के लिए। ललायित क्यों है तो उसका उत्तर हम आज के श्लोक में समझ सकते हैं कि पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के सत्यावेश अवतार थे। इतना तो हमें पता लग चुका है कि पृथ्वी महाराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सत्रहवें अवतार है। आगे अनुवाद में लिखते हैं, फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मनभावन लगती है और कल्याणकर होती है। तो ये वो कारण हो सकता है कि भगवान से संबंधित कोई भी कथा सुनना उससे कल्याण ही होता है, वो सुनना अच्छा है। तो इसलिए भी विदुर जी बहुत ही अपनी उत्साह दिखा रहे हैं और ज्यादा जानने के लिए, पृथ्वी महाराज के घटनाक्रम के बारे में और जरा जानने के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं विदुर जी। तो अनुवाद में लिखा है कि कृष्ण की शक्तियों के सत्रहवें सप्ताह, यानी कि पृथ्वी महाराज की कथा वो इसलिए सुनना चाह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी महाराज में शक्तियों का समावेश है, कृष्ण की शक्तियों का समावेश है। तो उन लीला को जान के क्या होगा, हम सबको पता है किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर प्रकट हुए तो उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की, और उसमें जैसे पूतना को मारना, बकासुर को मारना, अघासुर को मारना, ये सब लीला हमने देखी। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी लीला की उन्होंने, लेकिन इन सब लीलाओं को पढ़ के भक्त लोग बहुत रोमांच महसूस करते हैं। तो वही शक्तियां जब पृथ्वी महाराज में बताई जा रही है आज के श्लोक में, तो उनको जानने के लिए विदुर जी और उत्साह दिखाते हैं कि उनमें शक्तियां हैं तो मुझे उनके बारे में आगे बताओ। आगे कहते हैं कि अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं, सारी की सारी कथाएं जितनी भी उनकी आगे आने वाली हैं, किस तरह से उन्होंने गाय को धुआ, किस तरह से इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया, किस तरह से वो सब कुछ जीवन के अंत में अपना निर्वाण के लिए चले गए, तो वो सारी कथा सुनाए शुरू से लेकर अंत तक। क्यों? क्योंकि पृथ्वी महाराज भगवान के सत्रहवें अवतार हैं। इस श्लोक से एक चीज और जो मुझे समझ में आती है, जो कि ज्यादा क्लियर है, श्लोक का पहली लाइन है, यच्छामद्यपि कृष्णस्य भगवान भगवतः प्रभो कृष्णस्य। तो यहां भी बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कृष्ण के अवतार। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसी चर्चा चलती है कि लोग बाग काफी हम लोग कभी कभी संकोच करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि विष्णु कृष्ण के अवतार हैं या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो ये बहुत ही आधारित, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है जो कि लगभग सभी के मन में उठता है। तो यहां देखिए एकदम क्लियर कृष्ण से लिखा हुआ है, विष्णु से नहीं लिखा हुआ, वैष्णव से नहीं लिखा हुआ, मतलब ये नहीं लिखा कि विष्णु के अवतार, डायरेक्ट लिखा है कृष्ण के अवतार, मतलब कि कृष्ण सत्रहवें अवतार है वो। तो तात्पर्य में प्रभु समझाते भी हैं, भगवान कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं नहीं गीता को क्यों माने, कृष्ण कोई आया महापुरुष था कुछ बोल के चला गया। लेकिन देखिए भागवत में भी इसका जिक्र आता है कृष्ण के अवतार, और भी कोई ग्रंथ लेंगे आप, उपनिषद पुराण जो भी लेंगे आप, शास्त्र वगैरह वेदांत पूरा पूरा वेद, समझिए यही मिलेगा कि कृष्ण ही अवतारी है। जयदेव गोस्वामी ने जो दस अवतार श्रोत लिखा उसमें कृष्ण का नाम नहीं आता कहीं पे भी, जो दस अवतार हैं दस अवतारों का नाम आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं भागवत में सुन रहा था अक्रूर प्रभु के द्वारा बता रहे थे किस तरीके से लाइन से नहीं केशव धवन बता रहे थे किस तरीके से दस अवतार पूरे लाइन से, पहला मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, तो उस तरीके से बता रहे थे, उसमें कहीं कृष्ण का नाम नहीं आया क्योंकि कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, अवतार नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो कि हम लोग तो बहुत लोग सब जानते हैं, लेकिन बताने के लिए आगे भी कि कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है, कृष्ण से सारे अवतार आते हैं। और आगे तात्पर्य समझाते हैं कि कृष्ण से ही बाकी अवतार आए, जैसे कि गुण अवतार। गुण अवतार कौन कौन से, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो कौन कौन से हैं? सतोगुण में कौन है? विष्णु। तो तात्पर्य वह लिखते हैं कि सतोगुण के अवतार हैं विष्णु, और रजोगुण के कौन है? ब्रह्मा, और तमोगुण के भगवान शिव। तो ये तीन अवतारों का भी प्रपाद इसमें जिक्र करते हैं, गुण अवतार। तो ये बेसिक पॉइंट यहां से एकदम क्लियर है कि कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। तो आज के वर्ष में जो है ये पृथु महाराज भी वो कृष्ण के ही 27 अवतार हैं, और इसीलिए विदुर जी बहुत लालायित हो रहे हैं उनकी कथाएं आगे सुनने के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे किस किस तरीके से वो पृथ्वी माता पे कुपित होते हैं, फिर किस तरीके से वो गाय बन के जाती हैं, फिर दूध वगैरह वो सब आगे सुनेंगे, वाद का विषय नहीं है। तो ये एक बात थी। आगे इसमें लिखा है कि अनुवाद में आता है, मैं तो आपका तथा अधोक्षर भगवान का भी भक्त हूं। तो ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदुर जी बोलते हैं मैं आपका भक्त हूं और भगवान अधोक्षर का भी भक्त हूं, इसलिए भी आप मुझे बताएं। तो जो भक्त लोग होते हैं, जैसे आप सभी लोग नित्य रूप से भागवत श्रवण करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में जाते हैं, कुछ हिंदी भागवत में आते हैं, तो भक्त लोगों का यही रुचि होता है श्रवण कीर्तन, सुबह सुबह मंगल आरती, फिर जपा करते हैं, फिर भागवत में सुनने आते हैं। तो भक्त लोगों का रुचि इसी में होता है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सके, क्योंकि श्रवण करने मात्र से ही कृष्ण के प्रति रुचि बढ़ सकती है। मुझे याद है कुछ दिन पहले हिजुलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी आके यहाँ पर हिंदी भागवत दिए थे, और बताए थे किस तरीके से हम लोग कृष्ण भावनामृत में अपनी रुचि बढ़ा सकें। तो उसमें मेन यही था श्रवण, हमें अधिक से अधिक श्रवण करना है, जितने ज्यादा श्रवण करेंगे उसके प्रति हमें रुचि बढ़ेगी। जिस तरीके से अभी अगर हम आजकल का एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें कि किस तरीके से क्लास में, अगर क्लास में बच्चा बैठता है सुनता है एक विषय को, तो उसकी उसके प्रति रुचि बढ़ती है, सभी की नहीं बढ़ती लेकिन सुनने पर बढ़ती है। खुद किताब लेके पढ़ेंगे तो इतना आसान नहीं है, जैसे कि हम तो गुरुकुल में जब देखते हैं तो किताब तो बहुत सारी मौजूद है, सिर्फ किताबों को पढ़ के इतना ज्ञान नहीं मिल सकता, इतना रुचि उत्पन्न नहीं हो सकता जितना सुन के होता है। तो श्रवण बहुत ही जरूरी है। तो भक्तों का मेन रुचि श्रवण में होता है, इसलिए बता रहे हैं यहां पर ये कि मैं तो अधोक्षर का भक्त हूं, इसलिए आप मुझे कथाएं सुनाएं। विदुर जी कहते हैं मुझे पृथु महाराज की और कथाएं सुनाएं, मुझे और सुनना है। एक और चीज यहां पर देखने को मिलती है अनुवाद में कि कृष्ण को अधोक्षर कहा गया है, अधोक्षज, जिसका अर्थ बताया गया है भगवान का जो अधोक्षज कहलाते हैं। इसमें नहीं लिखा, एक जगह और मैं देख रहा था उसमें लिखा था, जो कि भौतिक चीजों से, इंद्रियों के इंद्रियों द्वारा समझे जाने से परे हैं। तो इसका मुझे, मैं देख रहा था तो मुझे मिला कुंती महारानी शिक्षाएं में पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, माया जवनी काच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूल दृशा नटो नाट्योधरो यथा। इसका मतलब है कि उसमें अधोक्षज का पूरा अर्थ है कि अधोक्षज भगवान का मतलब जो इंद्रियों से समझे नहीं जा सकते। क्यों समझे नहीं जा सकते? हम तो देखते हैं, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो बोलते हैं जो दिखता है वही सच है, जो नहीं दिखता उसको हम कैसे माने, हम कैसे माने भगवान है, कैसे माने आत्मा, हमने तो कभी देखी नहीं ना कभी महसूस करी अपनी इंद्रियों से। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम सब कुछ अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। जिस तरीके से अगर आप दृष्टि को ले लें, आंखों को, तो आंखों की सीमा एक लिमिट तक है, उसके बाद हम नहीं देख सकते। अगर अंधेरा हो तो हम नहीं देख सकते, उल्लू देख सकता है, उसको हो सकती है, हम नहीं देख सकते अंधेरे में। तो हमारी आंखों की सीमा है, हम सब कुछ नहीं देख सकते, और इंद्रियां सुनना, हम सब कुछ नहीं सुन सकते। यहां तक कि मैंने तो यह सुना है कि जब हाथी चिंघाड़ता है तो उसकी चिंगारने की आवाज इतनी तेज होती है कि हमारे कानों में नहीं आ सकती। हमारा जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक, तो वहां तक उसके परे है, तो हम लोग नहीं सुन सकते। कुछ दिन पहले रतिम कृष्ण प्रभु जी भी एक वीडियो दिखा रहे थे, उसे बताया जा रहा था कि इवन जो सूर्य ग्रह है, सूर्य, वहां से भी कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन हमारे जो सीमा है, कानों के सुनने की सीमा, उससे आगे है। तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, उसको कुछ परिवर्तन लाए उसकी फ्रीक्वेंसी में और सुन के देखा। और आप सबको पता ही होगा वो शब्द क्या था, ओम। ये वीडियो में दिखाया उन्होंने कि जो सूर्य प्लेनेट, जो ग्रह है, वहां से जो शब्द निकलता है जो हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे उसमें मैच नहीं करता, लेकिन शब्द तो आता है। उसका जो मैच किया गया तो क्या शब्द था, वो ओम। जिसका उन्होंने पूरा वीडियो दिखाया था। एनीवेज, तो मैं ये बता रहा था किस तरीके से हमारे इंद्रियां सीमित हैं, हम सब कुछ नहीं समझ सकते। सूंघना, अगर जुकाम, जैसे कि मुझे भी जुकाम है, तो ये इतना सुगंधित नहीं लगते पुष्प, हालांकि पुष्प में सुगंध तो है, लेकिन मुझे भी नहीं लग रही है। क्यों? मुझे जुकाम है। जब जॉन्डिस होता है तो जीवा जो कि स्वाद को चखती है, बताती है कि नमकीन है, खट्टा है, कैसा है, तो जॉन्डिस में गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है। गन्ने का जूस तो कड़वा नहीं होता, वो तो मीठा ही होता है, सबको पता है, लेकिन लगता है कड़वा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। अपनी इन इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। आगे कुंती महारानी कहती हैं अगले श्लोक में, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विद्यानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रिया। बहुत ही सुंदर विवरण देती हुई कुंती महारानी कहती हैं कि आपको समझना तो परमहंसों के भी, जो परमहंस लेवल पे स्तर पे लोग होते हैं, उनके वश में भी नहीं है। मुनि नाम वो भी नहीं समझ सकते, तो हमारी तो बात ही क्या। हमारी माने वो स्त्रियों को बता रही हैं कि स्त्रियां, तो कुंती महारानी ऐसा बताना चाह रही हैं कि इतना समझ नहीं होता कि, तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुष नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या समझेंगी। हालांकि हम जानते हैं कि कुंती महारानी का स्तर क्या है, और बल्कि इतना ही नहीं, भागवत में सबसे पहली प्रेयर ही प्रार्थना ही कुंती महारानी की रखी गई है, तो उनका स्तर बहुत ही ऊंचा है। लेकिन वो अपनी विनम्रता के कारण ऐसा कह रही हैं कि वो नहीं समझ सकती। तो उसमें बताती है वो कि हम लोग नहीं समझ सकते आपकी लीलाओं को, आपकी लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। तो वहां पे तात्पर्य प्रभा समझाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, तो सीमित इंद्रियों से हम लोग असीमित भगवान कैसे समझ सकते हैं। भगवान तो असीमित है, हर जगह व्यापक है। उनकी अगर हम कृष्णा बुक पढ़ें तो कितनी लय आती हैं। गोवर्धन को इस उंगली के नखून के ऊपर उठाना यही समझ में नहीं आता हमको। तो अगर हम गोवर्धन को आज के रूप में देखें, हालांकि बहुत नीचे जा चुके हैं, अभी उसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अगर अभी कल्पना करने की कोशिश करें कि वो गोवर्धन हमें तो कोई उंगली पर उठाए, उंगली पर उसका पत्थर ना उठे हमसे, तो है ना, गोवर्धन की एक छोटी शिला भी उंगली पर ना उठा पाए हम लोग। भगवान ने पूरे गोवर्धन पहाड़ को उठाया छोटी सी उंगली पर, तो उनकी लीलाओं को समझ पाना आसान बात नहीं है। केवल किसी की कृपा होगी तो हम समझ सकते हैं। जैसा कि हम गुरु पूजा में सुबह गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो जब हम गुरु को समर्पित होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु के पास बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान दे रहा है, वो तो होगा ही होगा, वो तो है, लेकिन इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता कभी कभी कि गुरु के साथ बैठ के डायरेक्ट फेस टू फेस ज्ञान लेना। लेकिन ये अगर आपकी श्रद्धा गुरु में है तो दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित होता है, हृदय के अंदर से आपको, हम सबको पूरा ज्ञान मिलता है। ज्ञान माने ये नहीं है कि हम वेद में पारंगत हो जाएंगे, हम अपने मुंह से एकदम श्लोका बोलने लगेंगे जैसे ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज ने तो भगवान के संग छूने से किया, लेकिन ऐसा नहीं है दिव्य का प्रकाश होने का मतलब कि हम लोग अब एकदम पारंगत हो गए, सरेंडर कर दिया भगवान को, तो अब हम श्लोका सब पता लग गया, हमें पूरे भागवत याद हो गया, गीता याद हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। एसेंस, एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान की भक्ति ही करनी है, ये सार प्रकाशित हो जाएगा और हमारी मति कृष्ण में लग जाएगी, ये ज्ञान प्रकाशित होगा अंदर से। निष्ठा, हम समझते हैं कि 8-9 जो भक्ति के स्टेप होते हैं कि कैसे पहले छोटा फेथ, फिर आगे जाके अनन्यवृत्ति आता है, ऐसे करते करते श्रद्धा निष्ठा तो पूरा आता है, तो वो उसका बढ़ोतरी होगी हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे चेतना में। तो आगे एक चीज और यहां पे समझने की है कि अनुवाद में लिखा है कि सुनाए जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गौरूप धरती का दोहन किया। तो यहां महाराज वेन को क्यों डाला गया है, महाराज वेन को तो अरसा हो गया गए हुए, महाराज पृथु कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कार्यभार संभाल रहे हैं, तो ये वेन को नाम जबरदस्ती क्यों डाल रहे हैं। तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे इसका उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि जो वेन है, जब वेन राजा थे तो उन्होंने सब बंद कर दिया था, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसके विपरीत राजा पृथु हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। और पृथ्वी माता जो कि बीज नहीं दे रही थी, उनपे कुपित होके उनको धोने की कोशिश करके सभी मानव जाति को बीज दे रहे हैं, फलस्वरूप दे रहे हैं, तो उनसे जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी मेरी समझ कहती है कि वेन को यहां बताया गया होगा कि वेन है और उनके पुत्र जो उनसे बहुत आगे हैं, भगवान के शुद्ध खुद भगवान के अवतार हैं, वैसा कर रहे हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेंटल स्पेकुलेटर भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः अल्पज्ञानी तो भगवान को समझ ही नहीं सकता। अगर हम कोशिश करें कि हम अपना दिमाग लगाएं और सारी भगवान की लीलाएं प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें तो हम भगवान के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, हम कहां पहुंचेंगे, प्रपद लिखते हैं, क्योंकि अपनी भौतिक इंद्रियां अल्पज्ञानी निर्गुण, भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर का निर्गुण रूप ही निर्मित कर सकता है, इसलिए भगवान अदृश्य कहलाते हैं। तो इम्पर्सनल निर्गुण, कि भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान इम्पर्सनल है, उनका पर्सनल कोई फॉर्म नहीं है, इस कॉन्क्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं अगर हम लोग अपनी मति लगाएंगे। तो जैसे वैज्ञानिक लोग, पीछे मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, बता रहे थे विदेशों में कहीं, पता नहीं आजकल की तो बात नहीं है, शायद कुछ पुरानी बात है, ऐसा कह रहे थे, हाँ याद आया, राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में सुन रहा था मैं, तो महाराज बता रहे थे कि ऐसा विदेशों में चल रहा था कि बहुत दिन हो गए इस भगवान को राजा बने हुए, वे काम करते हैं भगवान को गद्दी से उतार देते हैं, किसी और को राजा बनाते हैं, तो उनको समझ ही नहीं है कि भगवान कौन है, वो समझते हैं भगवान एक राजा है, हम पे अधिकार जमाए हुए है, उसको उतार देते हैं। अब उनको लग रहा है कि अपनी समझ लगा रहे हैं ना, वो अपनी मति लगा रहे हैं, उनकी मति क्या कहती है, जिस तरह यहां पे हम देखते हैं राजा है प्रजा है, राजा ने अच्छा काम नहीं किया गिरा दिया, जैसे आजकल पॉलिटिक्स है, किसी नेता ने अच्छा काम नहीं किया अगले चुनाव में उसको हरा के नया नेता बना दिया, नया अधिकारी बना दिया, तो वैसे समझते हैं वो लोग, क्या समझते हैं कि भगवान भी बहुत राज कर लिया हम लोगों पर, अब भगवान की गद्दी को गिरा दो, अब किसी को भगवान बना देंगे हम लोग, हम खुद भगवान बन जाएंगे। तो ये जो धारणाएं हैं ये गलत हैं। ये कैसे आती हैं, जब हम खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, जब हम खुद समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं यहां बताऊंगा आपको, ये सारे शास्त्र तो वही है, भगवत गीता के 1000 श्लोक तो वही है, भागवतम के 18000 श्लोक वही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। लेकिन इन्हीं का अर्थ जो मायावादी लोग होते हैं वो अलग निकालते हैं, जो भक्त होते हैं वो अलग निकालते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी मति लगाना, तो जो अपनी मति लगाएंगे प्रभा क्या लिखते हैं, वो निर्गुण रूप ही पा सकते हैं केवल। तो इसीलिए वो अपनी मति लगाएंगे, सोचेंगे अच्छा भगवान से सब कुछ आया है, भगवान बोल रहे हैं ना सब कुछ मुझसे आता है, अहम वीर प्रतापिता, वो सोचेंगे अच्छा सब कुछ भगवान से आ गया, अब भगवान खत्म, भगवान की शक्ति पूरे में फैल गई, अब भगवान नहीं है, वही सोचेंगे, वही निर्गुण निर्गुण तत्व आ जाएगा। तो अपना दिमाग लगाएंगे तो यहां से निकलेगा, लेकिन परंपरा में चलेंगे। जैसे कि वैष्णव लोग परंपरा में चार संप्रदाय मानी जाती हैं, तो हम लोग चतुर महापुरु की श्रेणी में आते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो महापुरु ने तत्व दिया चिंत अचिंत भेदाभेद, एक भी है अनेक भी है, ड्युअलिटी द्वैतवाद, कि हम लोग भगवान से एक भी हैं लेकिन क्वालिटीज में, भगवान की में जो क्वालिटी है हम में भी है लेकिन क्वांटिटी में नहीं। जितनी भगवान में वो शक्तियां हैं हम में वो शक्तियां उतनी ताकत में नहीं है। तो हम लोग एक तो है भगवान से लेकिन क्वालिटीज में केवल, लेकिन हम लोग अलग हैं क्योंकि हम में वो शक्तियां उतनी मात्रा में नहीं और कभी नहीं हो सकती। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले एक भागवतम में अक्रूर प्रभु जी बता रहे थे कि वो ये समझा रहे थे द्वैतवाद अद्वैतवाद, तो बता रहे थे कि वो लोग मानते हैं कि जैसे बूंदी का लड्डू, बूंदी सबको पता है बूंदी, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते हैं बूंदी का, तो वो बूंदी अलग अलग होती है लेकिन जब उस बूंदी को आप एकत्रित करके लड्डू बना देते हैं तो लड्डू हो गई। अब तो वो ये समझते हैं अद्वैतवादी कि हम लोग अभी जीवात्मा लोग छोटे छोटे भगवान हैं, जब हम लोग मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं बूंदी के लड्डू की तरह, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी के लिए फिर माधवाचार्य आए और आगे हम देख सकते हैं वैष्णव संप्रदाय में सभी लोगों ने प्रचार किया द्वैतवाद का, नहीं हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते, भगवान भगवान है, भक्त भक्त है, भक्त केवल भगवान की पांच रसों में सेवा कर सकता है, जो कि गीता के परिचय में प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत क्लियर ढंग से, पांच रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस, इन पांच रसों में ही भक्त भगवान से जुड़ सकता है। तो रस का होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भगवान से आप मिल गए तो कहां रस रहा, रसहीन हो गए हम तो, इसलिए ये रस रहेगा, किसी एक रस में हमें करना है। और हम सोचते हैं कि जैसे कई बार सोचते हैं सहज ही है लोग, वो पहली मांग के बैठते हैं, नहीं हम तो गोपियां हैं, और उसी तरीके से एक्ट करते हैं, अपने कार्य करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये रस ये जो भाव है ये प्रकट होगा। अभी बताया ना गुरु पूजा में क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, केवल अपनी मति गुरु के प्रति हम निश्चित रखें, गुरु की बताई गई सेवा में हम लगे रहें, जो प्रभुपाद जी बता के गए हैं हमें प्रोसेस उसको हम निरंतर रूप से पालन करते रहें, सुबह मंगल आरती, भागवतम क्लास, प्रसाद का खाना वितरण करना, पुस्तक वितरण करना, जपा करना, कीर्तन करना, यही सब प्रोसेस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम सुबह उठते हैं, अगर एक बार हम सुबह उठ जाएं तो ये सारा ऑटोमेटिक हो जाता है ना, सुबह उठ के मंगल आरती कर लिया, उसके बाद जपा कर लिया, मंगल आरती में कीर्तन भी हो गया, फिर जपा के बाद गुरु पूजा किया, वहां फिर कीर्तन हो गया, फिर भागवतम में, फिर प्रसाद में ले लिया, तो पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज है। एक बार सुबह उठ के मंदिर चले जाओ, अपना आप सब हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इस संस्था में इतना अच्छा डाला है कि बस आपको सुबह उठ के नहा धो के मंदिर आना है, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है, सारे अंग फुलफिल हो जाते हैं, रीडिंग हियरिंग श्रवण कीर्तन सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस आपको सुबह उठ के नहा धो के मंदिर आना है, एक बार अपने आप ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैं बता रहा था किस तरीके से अगर हम खुद दिमाग लगाएंगे तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा निर्गुणवादी ही निकलेगा। और प्रभुपाद जी ने इसका खंडन किया हर जगह, प्रभुपाद जी का जो मंत्र है क्या है, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, निर्विशेष, जो लोग भगवान को विशेष नहीं समझते, भगवान को विशेष नहीं है, हमारी तरह ही है, हम भी भगवान बन सकते हैं कभी कभी, उस तथ्य को प्रभुपाद ने झुठलाया है पाश्चात्य देश तारी ने। पाश्चात्य देश में ऐसी फिलॉसफी बहुत थी, तो प्रभुपाद ने उसका खंडन किया है पूरी तरीके से। और प्रभुपाद ने नहीं, पूरी परंपरा में कहीं भी ले लीजिए आप, सबने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो कितने लोगों से मिले, कितने मायावादी से मिले, सबको कन्वर्ट कर दिया। यहां तक कि इतना नहीं, मुझे याद है चैतन्य लीला में आता है, मध्य लीला में आता है, जब महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो मूर्छितों के गिर पड़े, अष्टसात्वी विकार में आए थे, फिर वो मूर्छितों के गिर पड़े तो उन्हें किसने संभाला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जो कि एक मायावादी था, उनका महाप्रभु से कोई संबंध भी था उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो मायावादी था। और क्या हुआ, महाप्रभु उन्होंने महाप्रभु को 7 दिन तक लेक्चर दिया मायावाद के ऊपर, वेदांत के ऊपर। और जब 7 दिन तक महाप्रभु कुछ ना बोले तो खुद ही पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, 7 दिन तक मैं लेक्चर दे रहा हूं, सब सामने बैठ के तुम केवल बैठ के सुन रहे हो, हां हूं ना हूं कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ समझ में भी आ रहा है। तब महाप्रभु ने बोला, जो आप वेदांत बोल रहे हो, फिलॉसफी दर्शन, वो तो मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन जो उस पर अपना तात्पर्य दे रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, वो बादलों की तरह उसको छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, अपना दिमाग लगाएंगे तो उसको मायावाद में कन्वर्ट कर देंगे। बड़े आसानी से भगवान लिखते हैं, अहम पिता पिता, अहम सर्वदा प्रभु, मुझसे सब कुछ निकलता है, उसको मान क्या लिया, सब कुछ निकल गया, भगवान खत्म। ऐसा नहीं है, भगवान खत्म, भगवान है, यही है नेक अनेक, भगवान एक है और भगवान से अनेक चीज निकलती है फिर भी भगवान एक रहते हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी माने असंग, असंग से आप असंग निकाल दो फिर भी क्या रहता है, असंग रहता है, क्योंकि असंग तो असंग है। असंग से मैं एक निकालू, दो निकालू, 10,000 निकालू, या असंग निकालू, असंग रहेगा। और असंग में अगर मैं असंग जोड़ दूं फिर भी असंग रहेगा, है ना। अगर मान लो मैं गिनती गिन रहा हूं 1, 2, 3, 4 करते करते असंग, अब असंग में मैंने एक और गिनती जोड़ दी असंग, तो आंसर क्या आया, असंग। तो असंग तो रहेगा असंग, चाहे उसमें असंग जोड़ दो चाहे असंग निकाल दो। तो यही बात है, जैसे कि ये भी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतने सारे लोग भक्त बन जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, असंग है ये, असंग है, असंग खत्म नहीं होता, कभी भी चलता रहता है, जितने लोग जाएंगे उतने लोग और भी आ जाएंगे, तो चलता रहेगा प्रोसेस, ये असंग है। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान है, भगवान से सब निकला भी है लेकिन भगवान फिर भी मौजूद है, भगवान में सब समा भी जाएगा फिर भी भगवान मौजूद रहेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और तो फिर क्या हुआ, 7 दिन का लेक्चर देने के बाद फिर जब महाप्रभु ने बोला कि मुझे कुछ, मुझे वेदांत समझ में आया लेकिन आपका जो तात्पर्य वो मुझे उसको छुपा रहा है, वेदांत की फिलॉसफी को, तो फिर उन्होंने कुछ तर्क वितर्क किया और उनको परास्त कर दिया। फिर एक दिन वो फेमस वर्ड है ना, ब्रह्म बता प्रसन्न आत्मा, उस पर चर्चा की तो महाप्रभु ने उसको 18 अलग अलग तरीके से, आप देखिए महाप्रभु खुद 18 अलग अलग तरीके से समझाते हैं उसको, और वो सारे 18 के 18 वैष्णव वाले थे, मतलब कि वैष्णव के उसमें आते हैं, कोई मायावाद उसमें नहीं था। तो ये भी संस्कृत की भाषा की ये अच्छी बात है कि हम उसको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। अब जिसका ज्यादा दिमाग लगाना चाहता है वो कहेगा कि ये मायावाद है, लेकिन जो परंपरा में सुन रहा है वो बोलेगा नहीं ये तो द्वैतवाद है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक परंपरा में इसको लेना है। तो ऐसा ही एक अच्छा, ये कल नित्यानंद रोचि था, तो आप सभी जानते हैं कि नित्यानंद ने भी सब पे कृपा किया, जगाई मधाई पे कृपा किया, जो लुटेरे डाकू थे उन पे कृपा किया, लेकिन जो मायावादी लोग हैं उन पर कृपा कैसे होगा, वो तो मानते ही नहीं है। इस तत्व को समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कि मैं कुछ पहले साल पहले मृदंगा सीखने गया था, मृदंगा क्लासेस, तो मुझसे हमारे टीचर ने पूछा कि आपको मृदंगा पहले से आता है, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने सीख जाओगे, उन्होंने कहा एक महीने सीख जाओगे, एक महीने में सीख जाओगे। लेकिन मेरा एक मित्र भी था, उसको थोड़ा बहुत मृदंगा आता था, वो कुछ बजाया करता था, तो उसको बोला तो उनको लगा इसको टाइम लगेगा, तो मैंने अकेले में पूछा क्योंकि सामने पूछूंगा उसको बुरा लग जाएगा मित्र को, तो उन्होंने बोला इसको पहले से आता है थोड़ा बहुत, और वो कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, वो सारा साफ करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मेहनत लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो मायावादी लोग हैं वो कृष्ण समझते हैं, हाँ कृष्ण है, कृष्ण की शक्तियां हैं, सब कुछ समझते हैं, सारे वेदों को मानते हैं, सारे पुराणों को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो उनका उनका कहते हैं उसे उनपे कृपा मिलना, उनको कृपा मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब महाप्रभु की कृपा होगी तो सार्वभौम भट्टाचार्य तक भक्त बन गए, प्रकाशानंद सरस्वती भक्त बन गए, साउथ इंडिया में कितने मायावादी थे सबको भक्त बना दिया। तो कृपा होगी तो भक्त बनना आसान है, वरना अपनी मति लगाएंगे तो भक्त बनना मुश्किल है, स्पेशली मायावादियों के लिए, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान पहले से है, वो कुछ समझते हैं कि हाँ होता है भगवान, हाँ भगवान तो नहीं लेकिन हाँ कुछ शक्तियां होती हैं, तो इसलिए उस वक्त उनको कन्वर्ट करना, उनको बदल पाना थोड़ा मुश्किल है, उनमें टाइम लगेगा। ठीक है ना, ओह मैंने समय देखा नहीं, क्षमा चाहता हूँ। किसी का कोई मैं यहाँ पर वाणी को विराम दूंगा, किसी का कोई टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो बंधु इसका तो पूरा विवरण है चैतन्य चेतामृत में भी है और भागवतम के भागवतम में भी है, मुझे पूरा पूर्ण ज्ञान तो नहीं है इस पे, लेकिन मैं जो समझता हूँ जैसे कि कृष्ण थे, फिर कृष्ण से शंकर बलदेव, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, फिर वहां से फिर चार निकलते हैं, उन चार में से एक होते हैं, उन एक से फिर शंकर निकलते हैं, उनसे फिर चार निकलते हैं, फिर उन एक से विष्णु निकलते हैं, तीन विष्णु निकलते हैं, ऐसा कुछ होता है, कर्णों से विष्णु, गरुड़ों से विष्णु, शिरों से विष्णु। तो जो हमारे परमात्मा रूप में अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं ना विष्णु, हमें विष्णु परमात्मा के अंदर है, वो होते हैं श्री से विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। ब्रह्मांड के अंदर दो विष्णु होते हैं, एक गर्भोदय से विष्णु जो गर्भोदय सागर में शयन कर रहे हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, और ब्रह्मा जी के पास एक एक श्वेत द्वीप है, वहां पर श्री से विष्णु होते हैं, वही विष्णु हर मैटर में प्रवेश करते हैं, गर्भोदय से विष्णु और कर्णों से विष्णु नहीं करते। तो जो शिरो से विष्णु है वो करते हैं परमात्मा रूप में भी, और सब हरी मैटर में हरे कणु में प्रवेश करते हैं, और वो होता है जिनके जिनके ब्रह्मा जाते हैं या फिर जो देवी देवता जाते हैं ना उनके पास जाते हैं, तो ये वो विष्णु है, और ये सब कृष्ण से ऊपर से ऐसे आता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो क्या चार नाम है और कैसे कैसे क्या वो नहीं, लेकिन ये ट्रेंड है इस तरीके से वो आते हैं नीचे। हाँ जी हाँ हरे हाँ, ये अच्छा प्रश्न है और काफी गहरा प्रश्न है, शायद मैं इसका उतनी सटीकता से उत्तर ना दे पाऊं, लेकिन जिस रूप में वो चाहते थे उस रूप में भगवान प्रकट हुए, कृष्ण रूप में प्रकट नहीं हुए, वो चाहते थे कि भगवान मेरे पुत्र बने, और उनको उसी का पता होगा कि चतुर्भुज फॉर्म होते हैं, तो वो उस रूप में प्रकट हुए, बाकी इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था लेकिन मेरी इतनी जानकारी नहीं है। हरे कृष्णा।